दिव्यों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। तो लास्ट संडे को हम डिस्कस कर रहे थे संस्कार के ऊपर। जैसे कि हमारे यहाँ संस्कार के अलग अलग मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। जिस संस्कार की चर्चा हम लास्ट संडे से कर रहे हैं वो है राइट अ पैसेज, जो सैक्रमेंट्स करते हैं, लाइफ के अलग अलग स्टेज को सेलिब्रेट करने का नाम संस्कार है। लाइफ के अलग अलग स्टेज पर बच्चे का जन्म से लेकर के मृत्यु तक, व्यक्ति का जो अलग अलग स्टेजेस से उसको ठीक से समझना, उसके रिलेटेड चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और सेलिब्रेट करना, इनका नाम संस्कार है। और ये भी हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ऑल्दो धर्मशास्त्रों में, गृह सूत्रों में नंबर्स की अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं, पर जो 16 संस्कार हैं, जो 16 संस्कार या 16 सैक्रमेंट्स हैं, वो ओवरऑल एक्सेप्टेड हैं। उनमें से हमने दो तीन संस्कारों की चर्चा लास्ट टाइम किया। पहला था गर्भाधान संस्कार। बच्चा पैदा होने से पहले ही जब एक न्यूली मैरिड कपल ये सोचता है, प्लानिंग करता है कि मेरे घर में एक आत्मा आए, एक बच्चा बनके, तो उसके लिए जो प्रिपेरेशन है, मेंटली हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, उसके लिए जो भी जरूरत है वो करें, और उस इन ए सेलिब्रेटेड वे, वो गर्भाधान संस्कार है। हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे इवन आप एक बैकयार्ड में एक प्लांट भी लगाते हैं, आप कितने प्लानिंग करते हैं, सॉइल की मैन्योर कितना चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए, कैसी जमीन होनी चाहिए, धूप पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पानी प्रॉपर मिले। और जब एक छोटे से प्लांट के लिए भी हम इतनी तैयारी करते हैं, घर में आप एक डॉगी भी लाते हैं तो आप कितनी तैयारियां करते हैं, इसी तरह जब आपके घर में एक आत्मा आती है, मैटेरियल तैयारी तो हम करते हैं कि किस रूम में रहेगा, कितने टॉयज होगा, क्या होगा, पर वो जो आत्मा हमारे थ्रू इस आपके घर में मेहमान बन के आ रहा है परमानेंट, उसका शरीर कैसा हो, मन कैसा हो, मोस्ट ऑफ टाइम ये हमारे हाथ में होता है। मां बाप कंसेप्शन के समय उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छा खान पान हो, अच्छे थॉट प्रोसेस हो, डिसिप्लिन लाइफ हो, ये खुद को करना पड़ता है। ये हमने डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसके हम कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान के बाद जो तीसरे महीने प्रेगनेंसी के जो सेलिब्रेशन होता है उसे हम कहते थे पुंसवन संस्कार, जहां गर्भ में जो फेटस है उसके प्रोटेक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना, फिजिकली जो भी एक्टिविटीज है उसको करना, मां को क्या क्या चीजें ख्याल रखना है, और जो फादर है वो मां के साथ किस तरह के मिलके क्या मां को हेल्प कर सकते हैं, उनके मन को खुश रखें, इस तरह की जो चीजें हैं वो पुंसवन संस्कार के द्वारा हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। अगेन इन ए सेलिब्रेटेड वे, उत्सव जरूरी होता है लाइफ में। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था क्यों संस्कार को हम सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके पीछे का कारण हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये जो बच्चे के पैदा होने से पहले तीन संस्कार होते हैं, एक गर्भाधान, एक पुंसवन, आज जो चर्चा करेंगे सिमंतोनयन। सिमंतोनयन जनरली जब प्रेगनेंसी में 6 महीने का या 8 महीने का ऑप्शन है, जब भी ठीक लगे तो ये सेरेमनी परफॉर्म किया जाता था। उद्देश्य यही था कि गर्भ में जो बच्चा अब काफी हद तक मैच्योर होता जा चुका है, होने की प्रोसेस में है, पुंसवन संस्कार में फिजिकली वो ठीक रहे, उसको केयर करने के लिए एक स्टेज है, सीमंतोन्नयन में ये मेंटली और फिजिकली हमें प्रिपेयर होने के लिए सीखे कि उसका जो माइंड है, उसका जो ब्रेन है, वो अच्छी तरह डेवलप्ड हो। अपने आप नहीं होगा, उसके लिए माँ और बाप को कुछ इस तरह के लाइफस्टाइल जीने की जरूरत है, वो कुछ करने की जरूरत है। महर्षि सुश्रुत, जो कि आयुर्वेद के वन ऑफ द ऑथर आचार्य हैं, वो लिखते हैं कि पांचवें महीने में माइंड ऑलमोस्ट अवेक हो जाता है, समझदारी आ जाती है। सिक्स मंथ तक इंटेलेक्ट डेवलप हो जाता है और सेवेंथ मंथ तक जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, सेंसर्स हैं, वो डेवलप्ड हो जाते हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में अलग अलग जो मंथ दे रखा है उसके बिहाइंड में भी यही लॉजिक काम करता है। फोर्थ मंथ में, इसीलिए कि तब तक ब्रेन सेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, तो आप इसको सेलिब्रेट करते हैं संस्कार के रूप में और मेंटली आप प्रिपेयर करते हैं। यही समय है जहां बच्चे को अब अच्छी अच्छी चीजें अभी से आप इनडायरेक्टली दे सकते हैं मां के थ्रू। उसके लिए करना क्या है हम बाद में चर्चा करेंगे। छठे महीने तक बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और आठवें महीने तक बच्चे का बॉडी, माइंड, ब्रेन और हार्ट ऑलमोस्ट रेडी होता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में या गृह सूत्रों में ये जो सातवें आठवें महीने की प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, द्विहृदया, ट्विन हार्टेड। अब वो एक इंसान नहीं है, उसके अंदर और भी एक दिल धड़कती है, दो दिल वाली। प्रॉब्लम हो रहा कि जो दूसरी दिल है वो डिपेंडेंट है, तो मां के दिल में जैसा भी घटेगा वो डायरेक्टली उसी के पास पहुंचेगा। इसीलिए विचारों की प्यूरिटी, अच्छे विचार आए, नेगेटिविटी कम आए, खुश रहे, मन शांत रहे, अच्छे अच्छे विचार लिया जाए, इन सब चीजों को, खान पान का ध्यान रखें, जिससे कि मां के दिल के माध्यम से बच्चे के दिल तक अच्छी चीजें डाला जा सके। मां बहुत ज्यादा घबराई हुई ना हो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेगनेंसी में, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में सुश्रुत चरण संहिता में एक लिस्ट दे रखी थी कि ये स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें नहीं करना चाहिए। जैसे कहा था कि अकेले किसी अकेला बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए, किसी तरह की आज की भाषा में कहें ऐसी कुछ नहीं देखना सुनना चाहिए जो आपको डर लगता हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता हो, नहीं करना चाहिए। तो ये द्विहृदया मां को समझने की जरूरत होती है कि मैं क्या सोच रही हूं, कर रही हूं, उसका इंपैक्ट भी अंदर बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए सुश्रुत रिकमेंड करते हैं कि इस अवस्था में प्रेग्नेंट मां एग्जॉर्शन को, किसी भी तरह का जो एग्जॉर्शन है उसको अवॉइड करे। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पति है वो भी पत्नी से बहुत दूर ना रहे, हर तरह से पत्नी को खुश रखने की कोशिश करे। लास्ट संडे को भी हम डिस्कस किया था, इवन हमारे शास्त्र रिकमेंड करते हैं कि पत्नी को खुशी के लिए उसको जैसे आभूषण पहनने की इच्छा हो तो अच्छे अच्छे आभूषण दें, कपड़े, जो भी उसकी मन को खुश रख सके, उसको केयर करें, उसको फील कराए कि वो अकेली नहीं है, जिससे कि उसका मन, उसका हृदय शांत रहे और कंटेंटेड रहे, संतुष्ट रहे। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहते हैं, The desires of the pregnant woman should be satisfied for healthy development of baby to prevent miscarriage and her health. तो ये हम शुरू से ये चर्चा, लास्ट टाइम भी हमने इसकी चर्चा की। बेसिकली सीमंतोन्नयन में होता क्या है, संस्कार के रूप में, संस्कार के रूप में जो भी नॉर्मल ईश्वर भक्ति की करते हैं, हवन वगैरह, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया क्यों हम हवन करते हैं, या कोई रिलीजियस एक्टिविटीज क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सेलिब्रेशन फैमिली मेंबर्स या सोशल सोसाइटी में जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल है उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन दो तरीके से होता है, आप सेक्युलर वे में कर सकते हैं या रिलीजियस वे में करते हैं। फर्क क्या है? सेक्युलर, जब आप सारे फैमिली या फ्रेंड्स को बुलाते हैं सिवाय एक को, वो सेक्युलर सेलिब्रेशन होता है। जब आप उस फैमिली मेंबर को भी बुला देते हैं जो कि तुम्हारे घर में है, तुम्हारे अंदर है, जो इनविजिबल है, जो पार्ट ऑफ योर लाइफ है, वो ईश्वर है। जब आप अपने सेलिब्रेशन में उस ईश्वर को भी शामिल कर देते हो वो रिलीजियस हो जाता है। और ईश्वर को शामिल करने का जो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है कि हम पूजा हवन अधिकरा द्वारा करते हैं, पर उसमें बेसिक सीमंतोन्नयन में होता क्या है? संस्कार में हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो उसकी पत्नी की जो बाल है तो उसको वो ठीक से कंघी करे, तो उसके लिए तेल लगाना, कंघी करना, वो उसको कहा जाता है। इसका भाव सिर्फ इतना है कि पति उसको केयर करे, उसको फील कराए, उसको प्यार अपनापन फील कराए। क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं उनकी हार्मोनी में काफी सारे इम्बेलेंस होते हैं, मन में, विचारों में, शरीर में, उनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। और वो चीजें बच्चे पर भी इफेक्ट करता है, अच्छा हो तो बच्चे पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बुरा हो तो बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है माँ और बाप, पिता और माता दोनों घर का माहौल ऐसा बनाएं, एक दूसरे के साथ रिश्ता ऐसा बनाएं कि बच्चे के ब्रेन जब डेवलप हो रहा हो, माइंड जब डेवलप हो रहा हो, तो अच्छे विचार उसके अंदर आए, अच्छे संस्कार आए। यही संस्कार का उद्देश्य हमने पहले दिन डिस्कस में किया था कि जो खराब चीजें हैं उसको नष्ट करना या दबाना, जो अच्छे संस्कार हैं उनको और डेवलप करना, और जो नहीं है या हम अपने तरफ से कोई चीज डालना चाहते हैं उसको डालना, यही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए मनुस्मृति कहते हैं, सो फॉर एन एक्सीलेंट ऑफस्प्रिंग इक्विप्ड विथ सुप्रीम इंप्रेशंस द वुमन शुड बी केप्ट इन ए कंड्यूसिव एनवायरमेंट। ये जिम्मेदारी है परिवार की, जिसमें पति है या घर के और दूसरे मेंबर हैं, कि घर का माहौल ऐसा रखें कि जो गर्भवती महिला है वो शांत, संतुष्ट, संतुष्ट भी जरूरी है, शांत, संतुष्ट और सुखी रहे। तो इस तरह सीमंतोन्नयन करते हैं। सीमंतोन्नयन जनरली, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की, मोस्ट ऑफ संस्कार हमारे हिंदू ट्रेडिशन में अब ऑलमोस्ट लुप्त होते जा रहे हैं, कोई एक आधा बचे हुए हैं। जो सीमंतोन्नयन का जो मॉडर्न वर्जन आजकल हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होकर के, हम इसको बेबी शावर कहते हैं। उसमें भी जनरली वही होता है, फ्रेंड्स आते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तो वो उसी सीमंतोन्नयन का एक रिफ्लेक्शन है। भारत में भी अलग अलग नाम से ये मनाया जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो, कहीं गोद भराई कहते हैं, कहीं सीमंत कहते हैं, कहीं सीमंतम कहते हैं, कहीं वलई कापू, मतलब अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नाम से ये संस्कार किया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये तीन संस्कार बेसिकली बच्चे को बाहर आने से, धरती पर आने से पहले की तैयारी है, गर्भाधान, पुंशवन और सीमंतोन्नयन, प्री नैटल सेरेमनी के रूप में हम इनको कह सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चा जब जन्म होता है उसके बाद की सेरेमनी, जो राइट ऑफ पैसेजेस होते हैं। जो 16 संस्कारों में से 12 करीब संस्कार, 11 या 12 संस्कार बच्चे के 8-9 साल तक हो जाते हैं बचपन में ही। 3 संस्कार तो प्रीनेटल है, बाकी 7 या 8 संस्कार 7-8 साल के अंदर तक हो जाते। क्योंकि जो भी आपको बच्चे को खुराक देना है वो यही एज होता है, पर्टिकुलर एज। इसमें आप अपने मिट्टी को जिस तरह के घड़े में कन्वर्ट करना चाहें वो बन जाता है। 60-70 साल के एज तक भी वही सबकॉन्शियस मेमोरी काम करता है, संस्कार काम करता है बच्चे के अंदर। तो सबसे क्रुशियल पीरियड जो बच्चे के लाइफ में होता है वो यही होता है, बच्चा 8-9 साल तक का जब होता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ संस्कार आज इन्हीं समय के, उसके बाद तो बहुत कभी गिने चुने कोई शादी वानप्रस्थ 25-30 साल में एक संस्कार का नंबर पड़ता है, 8-9 साल में 10-11 हो जाते हैं, बाकी तो 25-20 साल में एक एक संस्कार का नंबर पड़ता है। उसके पीछे रीजन यही है कि बच्चे को जो कुछ आप बनाना चाहते हैं जैसा, वैसा सब इसी एज में बन सकता है। सबसे पहले होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म सिंपल मीनिंग है, न्यू जो बच्चे की जो बर्थ होता है, जो फ्रेश बर्थ होता है, वो बर्थ को सेलिब्रेट करने का। पहली बात तो है कि हमारे घर में बेबी आता है उसको सेलिब्रेट करने का, वेलकम करने का है। हमारे घर में एक दिव्य आत्मा प्रवेश करती है, हमारे फैमिली मेंबर बनके हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और मां और बाप को हर संस्कार के पीछे एक एजुकेशन होता है, एक इंप्रेशन बनाया जाता है, बच्चे के ऊपर कम मां बाप के लिए ज्यादा, कि मां बाप को क्या क्या ध्यान रखना है। उन संस्कारों के माध्यम से उनको वो ट्रेनिंग या एजुकेशन मिलता है। आजकल बहुत सारी चीजें डॉक्टर्स भी बता देते हैं, पर सब कुछ नहीं। डॉक्टर तो सिर्फ 2-4 चीजें खान पान इधर बता देते हैं, पर बहुत सारी चीजें लाइफ में होता है जो आपको संस्कार के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों से या को जानने को मिलता है। बच्चे को बेसिकली जो भी पूजा होती है, जो भी होता है, उसके अलावा उसको घी और शहद खिलाया जाता है। यूएसए में हनी खिलाना मना होता है न्यूबॉर्न बेबी को, घी वगैरह, पर हमारे कल्चर में ये माना जाता है घी शरीर को पुष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। शरीर और ब्रेन को, बॉडी और ब्रेन को पुष्ट करने के लिए घी बड़ी जरूरी चीजें होती है। आयुर्वेद में तो उसकी इतनी प्रशंसा है, इतनी प्रशंसा है, उसको एक लाइन में कहें कितने आयुर्वेद घृतम, मतलब घी, अगर घी क्या है, मतलब ये आयु ही है, यही है लाइफ स्पैन, मतलब घी इक्वल टू आयु लाइफ स्पैन है। जिसने बचपन में जितना घी खाया हो बुढ़ापा में नहीं, मतलब बुढ़ापा में खा सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी। खाना जरूरी है, जिनको खाने की आदत है जरूर खाएं, और घी खाने के बाद थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। पर कहते हैं बचपन में जितना घी खाया हो वो जाकर काम आता है आगे। इसी तरह शहद, आजकल तो आपको पता है शहद कितने सारे मेडिसिनल चीजें हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बच्चे के मुंह पर जीभ में उसके पिताजी एक ओम लिखते हैं। ओम परमात्मा का नाम है। बच्चे के अंदर इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली इंप्रेशन डाला जाता है ईश्वर के प्रति भक्ति का। और पिताजी कान में विस्परिंग करते हैं गायत्री मंत्र का और बोलते हैं कोसी, कौन हो, फिर बोलते हैं वेदोसी, तुम वो ज्ञान हो। ज्ञान इग्नोरेंट नहीं हो, तो नॉलेज हो, फॉर्म ऑफ नॉलेज हो। एक हमारे यहां कथा आती है मदालसा की, ये अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को सिखाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ये कल्चरल डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ रिलीजन में पैदाइशी बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम यू आर ए सीनर बाय बर्थ, सो यू बिलीव, इफ यू बिलीव दैट सो देन ओनली यू विल बी ए सिनलेस पर्सन। पर हमारे ट्रेडिशन में उल्टा सिखाया जाता है, बाय बर्थ यू आर ए शुद्ध, यू आर द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म पर्सन, शुद्ध हो तुम, बुद्ध हो, एनलाइटेंड हो, ज्ञान हो, वेद हो, निरंजन हो, स्टेनलेस हो। तुम्हारे जो अच्छाइयां या बुराइयां हैं, पाप या पुण्य है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम कर रहे करोगे या करके आए हो। पर बाय नेचर तो तुम शुद्ध हो। तुम्हारे अंदर जो अशुद्धियां भी है, जो पाप है या पुण्य है, उसकी जिम्मेदार तुम हो और उसको ठीक भी तुम करोगे, पर बाय नेचर तो तुम शुद्ध हो। ये सिर्फ कान में व्हिस्परिंग की बात नहीं, ये दिमाग में डालने की बात होती थी। बचपन से बच्चे के अंदर ये भाव डालने की कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, वेद हो, ये डालने की जरूरत होती थी। बच्चा जब बड़ा होता है इसी भाव के साथ कि मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर उसकी लाइफ किसी दूसरे तरह की होगी, और पापी बोल के बढ़ाने वाले बच्चे की लाइफ में कुछ दूसरा चेंजेस आएगा। बच्चा जब 11 दिन का हो जाता है, दूसरा सेलिब्रेशन होता है, जैसे संस्कारों का मैंने बताया था, और एक पर्पस होता था कि हर वो स्टेज को सेलिब्रेट करना। इंसान के लाइफ में जो भी चीजें पहली बार होता है, पहली बार उसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए। जब सेलिब्रेट धूमधाम से करने की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आता होगा किसी क्लब में या किसी पार्टी करना। हमारे पूर्वजों के लिए पार्टी का मतलब था उस पार्टी में ईश्वर भी शामिल होगा, प्रभु भी शामिल होगा। जहां प्रभु को शामिल करने का मतलब जहां आप पूजा हवन धार्मिक कृत्य करते हैं। कुछ गृहसूत्र में या धर्मशास्त्रों में जात कर्म, जो बच्चे के पैदा होने के साथ जो संस्कार, और नामकरण, जो बच्चे को पहली बार आप नाम देते हैं, ये दोनों को कंबाइंड करने का भी बहुत सारे जगह विधान है, और प्रैक्टिकली भी बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं, और दोनों भी बहुत सारे शास्त्रों में दोनों अलग अलग करने का भी विधान है। अलग अलग करें तो 11वां दिन जनरली नामकरण संस्कार किया जाता है, जब बच्चे को नाम दिया जाता है, और उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे शास्त्रकारों ने बनाया था कि जब बच्चे का नाम रखो तो किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी बच्चे का नाम आप अगर रॉन्गली ले लीजिए, देखिए कितना वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। हम स्कूल में जाते हैं कभी कभी बच्चों के साथ पढ़ाने, तो अगर गलती से हमारे मुंह से ठीक से नाम नहीं निकला तो वो आपको 10 बार टोकेंगे और करेक्ट करा के छोड़ेंगे। बड़ा चुपता है जी, बड़े तो माफ कर देंगे, बच्चे नहीं करने वाले। आपकी आइडेंटिटी उसी से होने लगेगी। और नाम में अगर कोई ऐसी आगे जाकर के कुछ गलत मीनिंग निकले, कोई गलत चीज के साथ रिलेट करे, तो बच्चे को जिंदगी भर अपने दोस्तों के द्वारा ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। वैसे भी अच्छे से अच्छे नाम को दोस्त बिगाड़ करके चिढ़ाते हैं, बुलिंग करते हैं, खराब ना हो तो परेशानी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक गाइडलाइंस बनाया था कि इन इन चीजों को ध्यान रखना है। कोई अनप्लीजेंट, इनऑस्पिशियस ऐसा वर्ड जिसको बोलने में मुश्किल होता हो, ऐसा वर्ड जो किसी एविल चीज को रिफ्लेक्ट करता हो, खराब चीज को रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसा नाम ऑलरेडी किसी खराब आदमी के साथ जुड़ा हुआ हो, इसको ना रखने की कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नाम जिसमें किसी अच्छी कैरेक्टर को डिफाइन करता हो, कोई अच्छी वैल्यूज को, अच्छी क्वालिटी को, स्टार्स के, मून्स के, प्लैनेट्स के नाम के साथ कनेक्ट करता हो, या किसी अच्छे जगह का या अपने बर्थ प्लेस का उसके साथ आइडेंटिटी स्थापित करता हो, या नेचर के जो अलग अलग एंटिटीज हैं, जो ब्यूटीफुल चीजें, अच्छी चीजें, उनके साथ मैच करता हो, ऐसा नाम रखें जो बोलने में आसान हो, सुनने में मिठास हो। मैं तो आपको समराइज करके बोलता हूं, पर उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस बने हुए थे। पर आयरनी देखिए, अगर आप हमारे दादा परदादाओं के लोगों के नाम देखेंगे, सबके नहीं अब भारत में, तो वो नाम कोलोराम, चुप, पिचकी, मतलब ऐसे उठपटांग नाम है, तो तेलीराम, बड़े अजीब अजीब नाम है। क्यों? जब इलिटरेसी बहुत बढ़ती है, जब इग्नोरेंस के मतलब हम एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं जिसके पास ज्ञान का तो अनंत भंडार है, पर जो सोसाइटी हजारों सालों से इग्नोरेंस और इलिटरेसी से डूबा रहा, और ये जो कंट्रडिक्शन दिखता है वो उसी कारण दिखता है कि एक बहुत रिच कल्चर का जो भार ढोने वाले लोग हजारों सालों से रहे, मोस्टली लिटरेट और इग्नोरेंस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके नामों में भी देखेगा। जैसे जैसे इंडिया में आप देखते हैं लोग पढ़े लिखे होते हैं, अब बच्चों के नाम भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, सुंदर होते हैं। वो अलग बात है कि आजकल बहुत सारे बच्चों के नाम ऐसा नाम होते हैं थोड़ा यूनिक दिखाने के चक्कर में, इतना मीनिंगलेस और गलत मीनिंग वाले भी निकल जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। इवन लेटर्स की भी ये रिकमेंडेशन किया गया है कि किन किन लेटर्स का यूज करें, अगर लड़की का नाम रखना है किन किन लेटरों का यूज करें। उसके पीछे एक बैकग्राउंड था, जो सॉफ्ट लेटर वाले हैं वो बच्ची के लिए रखा जाए, जो थोड़े हार्ड लेटर वाले या दूसरे टाइप के हो वो पुरुष बच्चे के लिए रखा जाए, ऐसा रिकमेंडेशन शास्त्रों के द्वारा किया गया। जो ऑड नंबर्स हैं मतलब जो तीन अक्षर वाले पांच अक्षर वाले नाम लड़कियों का हो, जो दो और चार अक्षर वाले नाम लड़कों का हो, जिन्हें लिए आप देखेंगे जो इंडियन नाम होते हैं वो लड़कियों के या तो मोस्टली या तो आ एंडिंग या ई एंडिंग या ई एंडिंग होती हैं, जैसे देवी पार्वती लक्ष्मी वगैरह वगैरह, या आ एंडिंग में गंगा सीता रमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देखेंगे मोस्टली या तो आ एंडिंग है या बड़ी या छोटी एंडिंग होते हैं। तो ये एक ऑल्दो अनोइंगली एक ट्रेडिशन को हम फॉलो कर देते हैं। आ एंडिंग में बहुत कम नाम स्त्रियों का मिलेगा, वैसे संस्कृत लैंग्वेज में भी आ एंडिंग फेमिनिन वर्ड ऑलमोस्ट ना के बराबर। न जानने के कारण बहुत जगह पर ऐसे लड़कियों का नाम आ एंडिंग रखे जाते हैं, तो उसे कंफ्यूजन होता है कि लड़का है कि लड़की है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बेसिकली इसके पीछे का भाव था कि नाम सुंदर हो, मतलब सुनने में अच्छा लगे, मीनिंगफुल हो और एक अच्छे कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर सके। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका नाम दुर्योधन हो। बट मजेदार बात है, मैंने यह नहीं कहा कि किसी का नाम दुर्योधन नहीं मिलेगा, बहुत लोगों का नाम दुर्योधन है पर बहुत कम लोग। माँ बाप बिना समझे दे दिया, बड़े होने पर क्या होता है, अब नाम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं, जिंदगी भर उसको ताना खाना पड़ता है। गलती कर दी ये तो दुर्योधन है। नाम अगर प्यारा हो अच्छा हो, किसी अच्छे महापुरुष की महात्मा की देवता को के साथ जुड़ा हुआ हो, तो आपके आपके कैरेक्टर में एक एक्स्ट्रा वो ले आता है। इस साइकोलॉजी को हमारे ऋषि मुनि समझते थे, इस छोटी छोटी चीजों को भी, इसलिए उस पर भी वो डिटेल में बात किया था, रिकमेंड करते थे कि नाम आपको कैसे रखना चाहिए। अगला सेरेमनी है, संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। जनरली जन्म के चौथे महीने में फोर्थ मंथ में रिचुअल किया जाता है। निष्क्रमण क्या है? बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है, अभी उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, बॉडी उसके गर्दन सीधे नहीं हुए थे, बॉडी इस तरह के ठंड गर्मी बाकी चीजों को हैंडल करने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए उसको अब आजकल तो घर में भी हर जगह आपके एयर कंडीशन माहौल है, आप बाहर भी ले जाए तो अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। तो बच्चे के लिए ये रिकमेंडेशन था कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज का हो जाए तभी उसको घर से बाहर निकाला जाए, पर उसको ऐसे नहीं, उसको भी सेलिब्रेट करने का। सेलिब्रेशन तो पार्ट ऑफ एवरी स्टेज होता था, उसको भी सेलिब्रेट करके करने का था, उसको कहते थे निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा जन्म के बाद पहली बार बाहर जाता था, कभी कोई उसको या तो सूरज दिखाते थे जो राइजिंग सन, या सनसेट, या रात हो तो मून दिखाते थे, इसी के साथ बच्चे को बाहर दुनिया दिखाते थे। आजकल बहुत लोग को अगर कोई करता भी है तो उसको दो तीन महीने के बाद अल्दो अनोइंगली उसको मंदिर ले जाते हैं या किसी यज्ञशाला में ले जाते हैं, जहां कोई रिलीजियस प्लेस पर ले जाते हैं कि पहली बार बच्चा निकले तो कोई अच्छे स्पिरिचुअल या रिलीजियस जगह जाए, इस भाव के साथ ले जाते हैं। ये निष्क्रमण संस्कार का विधि है। इसी तरह जब बच्चा पहली बार खाना खाएगा, बच्चे की पहली बार नाम पड़ा तो भी सेलिब्रेट करना का, बच्चा पहली बार बाहर निकलेगा निष्क्रमण संस्कार, उसको भी सेलिब्रेशन के रूप में रखते हैं। और बच्चा जब पहली बार खाना मतलब कोई सॉलिड फूड खाएगा, एज बेसिकली 6 महीने के आस, 5-7 महीने के जो भी हो, या बच्चे के अंदर जो दांत आने लग जाए, थोड़े माढ़ियां जो मजबूत होने लग जाए, दांत आने की साइन आ जाए, तो बच्चे को खाना खिलाया जाता है सॉलिड फूड। किसी घर में दूध चावल या अलग अलग हर स्टेट्स में अपने अपने ढंग से दूध का बना हुआ, अब माँ के दूध के साथ साथ गाय के दूध भी पीने की आदत डलवाई जाती है, माँ के दूध को कम करने की प्रैक्टिस की जाती है। जैसे बच्चा धीरे धीरे माँ से इंडिपेंडेंट होकर बाकी चीजें खाना लगे, सबसे पहले गाय के दूध से, बाकी दुनियादार की छोटी छोटी चीजों के एक्सटर्नल चीजों को वो यूज करना सीखे, अभी फल रस जो भी है हिसाब से। पर आप वैसे तो अचानक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जब मर्जी कर सकते हैं, पर जब आप इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो संस्कार बन, वो फिर संस्कार बन जाता है। वो सेलिब्रेशन में जब आप ईश्वर भक्ति ईश्वर पूजा को भी जोड़ देते हैं, फिर वो संस्कार बन जाता है। इसी तरह मुंडन संस्कार अगला होता है। बहुत लोग आज भी मुंडन संस्कार है, उसके अलग अलग नाम है, कहीं चौल संस्कार, कहीं चूड़ा कर्म, कहीं केशव अपन, कहीं चौर, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहां बच्चे की पहली बार पूरा शेव किया जाता है, सर को किया जाता है, ये ट्रेडिशन आज भी बहुत सारे लोगों के घर में है। जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ संस्कारों में कुछ संस्कार जाने अनजाने में है, किसी को समझ में है नहीं है, पर वो संस्कार रूप में है। 1 से 3 साल के बीच में कभी भी किया जा सकता है। जनरली जब बाल थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक ठाक आ जाते हैं, करने के 1 या 3 साल के पीछे करने का जो रीजनिंग था, जो बच्चा पैदा होता है उसके जो स्कल होता है बीच में वो सॉफ्ट होता है, अभी तक वो भरा हुआ नहीं होता है, तो इसीलिए आप तब तक बाल नहीं काट सकते जब तक कि पूरी तरह वो भर ना जाए, क्योंकि चोट लग सकता है, बहुत सॉफ्ट है, खराब हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जब तक वो स्कल ना भर जाए तब तक उसके बाल काटने का विधान नहीं होता था। जनरली 1 से 3 साल के अंदर वो स्कल भरने लग जाता है। अब जो पर्पस था बालों की, अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उस काल को सेव करने का, अब इसको काटने का टाइम आ चुका है। पूरी तरह रिमूव करने के पीछे 2-3 रीजन थे, बड़े प्रैक्टिकल रीजन, कि मां के पेट से जो बच्चा बाहर आया वो जो फ्लूइड के साथ उसका सर था जो है वो ये बाल बाहर आए, उसकी जो यूटिलिटी थी कि उस कल को प्रोटेक्ट करे या सर को थोड़ा प्रोटेक्ट करे, अब वो काम हो चुका है। एक बार पूरी तरह निकाल देना अच्छा है, क्योंकि नए बाल आएंगे, जो गंदा बाल है जो मां के पेट गर्भ के समय लिक्विड के साथ था वो साफ हो जाएगा, ज्यादा दिन तक रहेगा वो सेम बाल तो इचिनेस भी और भी रिंगवर्मी बाकी चीजें होने के चांसेस रहते हैं गंदगी के कारण। जब पूरी तरह आप बाल को एक बार शेव कर देते हैं फिर नए बाल आता है और बच्चे को भी रिलैक्स फील होता है, और जो गंदगी या इंप्यूरिटी थी उससे छुटकारा मिलता है। बेसिकली यही रीजन है मुंडन संस्कार कराने का। पर जब आप इसको सेलिब्रेशन के माध्यम से करते हैं फिर वो संस्कार बन जाता है। वैसे तो आप नाई के पास लेकर के मुंडवा करा जाएंगे, पर जब आप इसको भी सेलिब्रेट करते हैं, हमने पहले दिन ये भी डिस्कस किया था, ये संस्कारों का एक और फायदा होता है कि बच्चे को वो फील कराया जाता है वो कितना एक्सक्लूसिव है हमारे लिए, कितना स्पेशियल है। फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर होते हैं, बच्चे को फील होता, हर वो छोटे छोटे संस्कार से बच्चे को कितना स्पेशियल हो उसको फील कराया जाता है, फैमिली गेट टुगेदर होता है, इस तरह के चीजें चलता है। अगला संस्कार है कर्ण वेद संस्कार, नौवां संस्कार है। ये आफ्टर बर्थ सेरेमनी के बेसिक संस्कारों में से आखिर संस्कार है। कर्ण वेद संस्कार पहले साल, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, अलग अलग साल से रिकमेंड है, वो कभी भी कर सकते हैं। गृह सूत्रों में तो जो इसकी रिकमेंडेशन है उसके पीछे उन्होंने रीजनिंग बताया कि ये बड़ा ये कितना सच है झूठ है तो जो डॉक्टर लोग ज्यादा बता पाएंगे, कि ये जो कान छेदा जाता है उसके दो पर्पस है, एक हेल्थ पर्पस में था कि जो हाइड्रोसील और हार्निया टाइप की चीजें हैं अब वो कान छेदने से वो कम होते हैं होते हैं, मैं कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, वो तो डॉक्टर लोग ज्यादा बताएंगे सचमुच होता है कि नहीं होता है, पर ऐसा सुश्रुत संगीता में, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान और आयुर्वेदिक किताबों में इसके रेफरेंसेस मिलता है। कितना सच है झूठ है मैं खुद ज्यादा नहीं जानता। और एक उसका एक एस्पेक्ट था ये कर्णवेद का, कान छेदवाने का, वो आजकल तो लड़कियां तो करते हैं, पुरुष लोग कम करते हैं, कुछ एरिया है जहां पुरुष लोग कान छिदवाते हैं। और अब इंटरेस्टिंगली आजकल तो एक ये मॉडर्न फैशन भी है, ये लड़के भी कान छिदवाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी पहनना होता था। दिव्य सज्जनों, प्राचीन काल में पुरुष और स्त्री दोनों ज्वेलरीज पहनते थे, नेकलेस भी, हार भी, कान में भी, सब जगह पुरुष भी पहनते थे, स्त्रियां भी पहनते थे, दोनों पहनते थे। धीरे धीरे अब ये ट्रेडिशन खत्म हो गया। अभी भी आप देखेंगे राजस्थान में, बाकी बहुत सारे साउथ में, बहुत सारे जगह है ट्राइबल एरिया में जहां लोग कान नाक में पुरुष लोग भी आभूषण पहनते हैं। अरे ये तो आजकल एक वेस्टर्न कल्चर में भी बहुत बड़ा पार्ट हो गया है कि लड़के भी आजकल कान में इधर उधर पहनते रहते हैं, उसके लिए आपको कान छिदवाने की जरूरत है। पर छिदवा तो आप कहीं भी सकते हैं, पर अगेन कोई भी चीज जो जरूरत हो फर्स्ट टाइम आप करते उसको आप सेलिब्रेट करने का, ये सेलिब्रेट उत्सव जो होता है ना ये बड़ा पार्ट होता था हमारे कल्चर का। हर चीज में उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ, और वो खुशी ईश्वर भक्ति को साथ जोड़ करके मनाओ, आनंद के साथ करो, फैमिली गेट टुगेदर करो, सोशल गेट टुगेदर करो। तो प्राइमरीली इसी पर्पस से कर्णवेद संस्कार किया जाता था। तो बच्चा को पैदा होने से पहले कंसेप्शन से लेकर के कर्णवेद तक नौ संस्कार, ये कुछ प्रीनेटल और आफ्टर बर्थ के संस्कार होते थे। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे थर्ड पार्ट में, एजुकेशनल संस्कार। आज बच्चा जब पढ़ने लिखने लायक होता है, आजकल तो बच्चे जो गवर्नमेंट रूल्स है 5 या 6 साल में बच्चा फर्स्ट ग्रेड में जा सकता है, उसे पहले प्री स्कूलिंग कहा जाता है। भारत में भी वही सिस्टम हो गया, 6 साल से पहले फर्स्ट ग्रेड में नहीं लेते। प्राचीन काल में 8 साल मिनिमम एज माना जाता था स्कूलिंग के लिए या गुरुकुल जाने के लिए। मजेदार बात है, बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बच्चे की जो पढ़ाई की जो बिगिनिंग है वो 8 साल ही है, 7-8 साल है। भारत में तो 4 साल में फर्स्ट ग्रेड होता था, फिर 5 साल, फिर हम क्या है कि जो प्राचीन भारत में जो भी चीजें हुआ करता था वो साइंटिफिक वे में था, पर हम लोग इलिटरेट या जिस भी कारण से हम उन सबको बड़े पुराने पोंगापंती समझ के छोड़ा, फिर वेस्टर्न लोगों ने वही स्टाइल अपनाया रिसर्च करके या अपने आप को स्टडी करके, फिर धीरे धीरे हम भी उन्हीं को वो शुरू करना शुरू कर दिया। तो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे जो एजुकेशनल सेरेमनीज होते थे, और ये जो सेरेमनी आगे आप जानेंगे, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, ये कितने पावरफुल होते थे। अभी तक तो आपने वो जाना जो बच्चे की लाइफ में जो चेंजेस लाता है, आगे के संस्कार सिर्फ बच्चे के लाइफ में नहीं पूरी सोसाइटी में चेंजेस लाता था। ये उपनयन संस्कार जिसकी मैं सिर्फ आज आपको भूमिका बता रहा हूं, अगले संडे को चर्चा करेंगे, ये इतना पावरफुल संस्कार था कि ये पूरी सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए ये काफी था। जब स्त्री और शूद्रों को सोसाइटी में सेकेंडरी बनाने की समझ डेवलप हुआ, मतलब तो रूल बना दिया गया कि इनकी उपनयन संस्कार छीन लिया जाए। ये उपनयन संस्कार छीन लेना 75% लोगों को सोसाइटी में सेकेंडरी सिटीजन बना दिया हजारों सालों से, इतना पावरफुल था यह संस्कार। तो ये हम अगले बार चर्चा करेंगे, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन संस्कार, लाइफ में एजुकेशन के साथ, क्योंकि क्या कनेक्शन है, एजुकेशन का क्या इंपोर्टेंस है, संस्कारों के द्वारा क्या बताने की कोशिश की जाती है, सोसाइटी में इसका कितना इंपैक्ट हुआ करता था, कितना पावरफुल इंपैक्ट इसका हुआ करता था, हम अगले बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।